अब इसके आगे एक किरदार शुरू होता है जो बदखुल्की की मकरूह तरीन शक्ल है। कुरान पाक में किसी एक इंसान के नाते से इतनी ज्यादा बुराइयां इकट्ठी कहीं नहीं आई जितनी इस रुकू में आई हैं, और इसके साथ किसी का नाम भी आता है जिसकी इस वक्त यहाँ जरूरत नहीं। कौन सी चीजें हैं जो इंसान के अखलाक को बुरा कर देती हैं, हमने अपनी नजर से सुनना है कि मेरे अंदर तो ये नहीं। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा कस्में खाने वाला, बेवकत आदमी, ताने देने वाला, चुगलियां करने वाला, भलाई से रोकने वाला, जुल्म और ज्याती में हद से आगे गुजरने वाला, सख्त बद आमाल, जफाकार यानी जिसको हम कहते हैं बेवफा, और बद असल यानी असल भी नहीं था, माँ बाप का भी नहीं पता था कि असल बाप कौन था। क्या अंजाम हुआ इस बदखुल्की का, इसे मतलब उसके सबब क्या थे, ऐसा क्यों था कि अल्लाह ने माल और बेटे दे रखे थे और अल्लाह की आयतों को सुन के कहता था ये पुरानी कहानियां हैं, तकब्बुर में मुबतला है, अंजाम क्या होगा इसका, अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला करेंगे। सनसीमहु अलल खुरतूम, उसके माथे पे दाग लगाएंगे, उसकी नाक के ऊपर दाग लगाएंगे। क्यों? कि इज्जत का बाइस समझता था। यानी ये एक ऐसा किरदार है जो नबी सल्लम के रास्ते में रुकावटें पैदा करता था दीन के मामले में। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की बात सामने रख दी कि अब भी किसी के अंदर इनमें से कोई एक या बहुत सारी मिसालें मौजूद होंगी तो वो समझ ले कि वो इखलाक की बदतरीन तस्वीर है। अपना जायजा लें हम सब भी, क्या मेरे अंदर ये बातें तो नहीं, इन जो मैंने आपको अभी 9 बातें बताई, क्या मैं इसके अंदर मुबतला तो नहीं। अगर एक या बहुत सारी हैं या कुछ ज्यादा हैं तो इंसान को यकीनन अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरा अखलाक अच्छा कर दे। अल्लामा हसन खुलूकी कमा हसन तखल्की, जैसे अल्लाह ताला तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई है इसी तरह मेरा अखलाक भी अच्छा बना। यानी ये इतनी बड़ी बात है कि इंसान का आला किरदार होना, दुनिया में जो उसके अखलाक हैं वो उसको क्यामत के दिन उसके लिए बाद में उसके दोबारा एक नया जिस्म बनेगा। एक लेक्चर इस पे पूरा हुआ था, खल्क से खुल्क तक, यानी दिल बदले सीरीज आपके सामने रखी थी रमजान से पहले हमने ऑनलाइन पे, तो उसमें एक पूरा किरदार ही ये था कि आज दुनिया में तो हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से बने हुए हैं ना, हमारी असल वो है, फिर उस पर अल्लाह ने रंग चढ़ा दिया बना दी। जन्नत की औरत किस चीज़ से बनेगी, ये जो हम सुनते हैं ना कि क्रिस्टल होंगी और शीशे की होंगी, लेकिन इंग्रेडिएंट क्या होगा, तो उसमें हमने देखा था कि जन्नत में हमारा इंग्रेडिएंट वो होगा जो दुनिया में हमारे अखलाक हैं। आज यानी मैंने गालिबन 9, मुझे याद पूरे नहीं आ रहे, 9 मुख्तलिफ फैक्टर्स बताए थे कि जिसकी वजह से जन्नत की औरत खूबसूरत होगी। जितना यहाँ इखलाक खूबसूरत होता जाएगा ये जन्नत का हुसन बढ़ता जाएगा, और अगर इखलाक यहाँ गंदा है तो वहां जाएंगे नहीं। यकीन करें बुरे इखलाक वाले लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो जन्नत के असल हुसन को भी बिगाड़ देंगे। अल्लाह ताला हमें आला इखलाक अता करे। फिर इसके बाद आपने देखा कि बाघ वाले किस्से की मशहूर की गई, तो असल में ये किस्सा अरबों में बड़ा मशहूर था कि एक बेटा था और किस बाप था, और वो अपनी चीजें जो था वो अपने को जब भी बाग में से कुछ कमाई आती तो उसमें से मस्किनों को भी देता और अपने हक को भी लेता। तो बेटों को ये चीज़ बड़ी बेवकूफ़ी लगी कि हमारा बाप कैसा है कि अपने माल का एक बहुत हिस्सा मस्किनों को देता है। तो जब बाप का इंतकाल हुआ तो बेटों ने ये प्लानिंग करी कि हम किसी मस्किन को फ़कीर को नहीं देंगे, और बजाय इसके कि सुबह जाके काटें फसल जब फ़कीर आते हैं, हम रातों रात काट लेंगे। तो ये बुरी प्लानिंग्स करके जाए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी नीयत की बुराई की वजह से रातों रात एक ऐसा अजाब भेजा कि सारा बाग जो था वो जल के राख हो गया। इस मंजर को देख के फिर उनको यकीन आ गया कि वाकई हम जो थे ये ऐसा काम कर रहे थे जो गलत था। और इसमें हमारे लिए अमल की बात यही है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसके बंदों के साथ शेयर करना है। बाज दफ़ा जब हम अपने चीज़ों के मामले में खुद ही हरीस हो जाते हैं ना, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर हम लोग उस नेमतों से भी महरूम हो जाते हैं। तो पूरे रुकू में जो चीज़ है वो क्या है, इखलाक की बुलंदियाँ, आला इखलाक होना है। अब तो कुरान पाक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है, अगर अभी भी इखलाक नहीं बुलंद होंगे तो फिर बाद में तो न जाने कब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करके आगे वाला रुकू शुरू करते हैं। रुकू नंबर 4, इन्नलिल मुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, परहेजगारों के लिए इनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। अफनजलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमानों को गुनाहगारों के बराबर कर देंगे? मालकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, कैसे फैसले कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि तुम्हारी इसमें मनमानी बातें होंगी, या तुमने हमसे कुछ कस्में ले रखी हैं जो कयामत तक बाकी रहेंगी, कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लो? और इनसे पूछो कि कौन इस बात का जिम्मेदार और दावेदार है? क्या इनके कोई शरीक हैं? तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आए अगर ये सच्चे हैं। यौम युक्षफ अन साकिम व युदाउन इला सुजूदि फला यस्ततीउन, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। खाशियतन अबसार हुम तरहकहुम जिल्ला, निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा रही होगी। हालांकि ये सजदे के लिए उस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि सही सालम थे। बस मुझे और इस कलाम को झुटलाने वाले को छोड़ दे, हम इन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इनको मालूम भी न होगा, और मैं इनको ढील दूंगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। अम दस अलहुम अजरन फहुम मिन मगरमिन मुस्कलून, क्या तू इनसे कोई उजरत चाहता है जिसके तावान से ये दबे जाते हैं, या क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे वो लिखते हों? फसबिर लि हुक्मि रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूत इज नादा वहुवा मक्दूम, बस तो अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतजार कर और मछली वाले की तरह न हो जा जबकि इसने गम की हालत में दुआ की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा। और अगर हाँ इसे इसके रब की नेमत न पा लेती तो यकीनन वो बुरे हालों में चटियल मैदान में डाल दिया जाता। फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन, इसे इसके रब ने फिर नवाजा और इसे नेक लोगों में कर दिया। मई यकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहू लमजनून, और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से आपको फिसला दे जब कभी कुरान सुनते हैं और कह देते हैं ये तो जरूर कोई दीवाना है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, दर हकीकत ये कुरान तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर रहमत है। ये था रुकू नंबर 4। इसका अनवान क्या है? अब हम न झुकने देंगे। क्यों? कि दुनिया में तुम नहीं झुकते थे। क्यामत का मंजर है सामने कि क्यामत के दिन किस तरीके से अल्लाह ताला को देख के लोग झुकना चाहेंगे लेकिन झुक नहीं सकेंगे। कमरे तख्ते की बना दी जाएंगी। इस रुकू में हमने शुरू में देखा कि मुजरिम और मुस्लिम बराबर नहीं, कि एक अच्छा काम करे और एक बुरा करे और मरने के बाद दोनों का एक ही बदला हो जाए, ये पॉसिबल नहीं, ये फितरत के खिलाफ है। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, इस आयत को, आयत नंबर 35 है। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम मुजरिमों को फरमा बरदारों के बराबर कर देंगे? फिर इसकी दलायल अल्लाह ताला ने मांगे, क्या कोई किताब है जिसमें ये पढ़ चुके हो? क्या हमने कहीं ये वादा किया है तुमसे किताब में? तो वो दिखा दो। कोई तुम्हारी जमानत देने वाला है? क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों ने इसका जिम्मा लिया है कि तुम कुछ भी करते रहो हम तुम्हें बचा लेंगे? और क्या लोगों के पास गैब का इल्म है कि जिसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई पढ़ ली? हकीकत क्या है कि जो अल्लाह से डरेगा उसके लिए रब के पास जन्नतें हैं। अगर हम इस आयत को देखें तो बड़ी वाज़े बात समझ में आती है, और वो क्या कि जो नेकी करेगा वो उतनी ही भरेगा, इसी तरह जो गुनाह करेगा वो उसको भी भरेगा। क्या दुनिया में ऐसा होता है कि एक तालिबिल मेहनत ना करे और दूसरा जो वो खूब मेहनत करे और रिजल्ट दोनों का सेम हो? नहीं मुमकिन। एक सुबह से शाम तक मेहनत करके आए, कमा के लाए, और दूसरा सारा दिन बिस्तर तोड़ता रहे और एंड ऑफ द डे दोनों के पास एक ही जितना माल हो? ऐसा नहीं होता। या अगर एक इंसान बहुत अच्छे काम करे, अल्लाह से डरे, रोज़ा रखे, मतलब तसव्वुर में लाए ना, एक किरदार रोज़ा रखा, गुनाह से बचता रहा सारा दिन, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, हराम की तरफ निगाह नहीं उठाई, फिर फिर रोज़ा खोला, फिर तरावी पढ़ने गया, फिर क़ियामुल लैल किया, यानी पूरी मुमकिन नेकियां की, और दूसरा शख्स है जिसने इनमें से कुछ नहीं किया। रोजे के लोगों के सामने शराब पीता है, दनदनाता है, लोगों के साथ फसाद करता है, नमाज के की बजाय सिनेमा घर जाके बैठ जाता है, रात को गंदी चीजें देखता है। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों को एक ही जगह जाना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी, और अल्लाह ताला तो ऐसी बेइंसाफी करने उसकी शान को ही नहीं ये लायक। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि बहुत सारे लोग अल्लाह ताला से इसी बेइंसाफी की उम्मीद रखते हैं। उनका ख्याल है हम कुछ भी कर लें देखना जन्नत मिल जाएगी, जबरदस्ती का सौदा लेते हैं कि नहीं देखना हमें मिल जाएगी, तुम नहीं समझो मिल जाएगी। कल बात की थी ना कि जब इंसान की फितरत में धौंस वाली कैफियत आ जाती है ना, अपनी ही बात मनवानी है, बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, कुछ जितना मर्जी कह दे ऐसा ना करो, वो फिर एक दिन के बाद वही सोचते हैं, नहीं जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। यही कैफियत बाज दफा फिर इंसान को इतना हट धर्म कर देती है कि वो जन्नत में भी इसी सोच के साथ जाना चाहते हैं कि देखना कौन है जो हमें रोके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तो किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं करेंगे। जिस तरह किसी हक वाले को हक से महरूम करना उस पर जुल्म है ना, कोई नेकी करे मेहनत करे और जहन्नुम में डाल दिया जाए, ये जुल्म है। इसी तरह कोई नेकी ना करे, बुरे काम करे और उसको जगह अच्छी मिल जाए, ये भी जुल्म है। ये किन पे जुल्म है? जिन्होंने अच्छे काम किए थे, मेहनत की थी, फिर वो सोचेंगे कि अल्लाह ताला फिर हम बेवकूफ रहे, हम भी गुनाह कर लेते, दुनिया में ऐश करते, अगर आज यही होना तो फिर हमने इतनी मुश्किलें क्यों सही। तो बहरहाल अपने अमल को परखने की जरूरत है हम सबके लिए कि क्या वाकई कल क्यामत के दिन हम अपने आमाल की सजा या जजा लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस दिन की सख्ती का जिक्र किया, कितना सख्त वक्त होगा कि लोग अल्लाह को देख के झुकना चाहेंगे लेकिन झुक न सकेंगे, इनकी निगाहें नीची होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। और उस वक्त फिर इनसे कहा जाएगा कि हमने तो तुम्हें सजदों की तरफ बुलाया था लेकिन तुम आते नहीं थे, तुम बिल्कुल सालिम थे। यानी रिवायत में आता है कि वो लोग जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे या अपनी मनमानियों में रहते थे, क्यामत के दिन जब अल्लाह ताला को सामने आता देखेंगे तो झुकना चाहेंगे। ये एक लामहाला सा होता है, जैसे आप किसी बड़े इंसान को देखते हैं तो खुद ब खुद आप खड़े हो जाते हैं अपनी जगह से, या मिलना चाहते हैं, या आपके दिल में आपके चेहरे पे एक अजीब सा रंग आने लगता है। अल्लाह ताला को देख के सारी मखलूक झुक जाएगी। तो ऐसे लोग भी झुकना चाहेंगे लेकिन इनकी कमरें पत्थर की पत्थरा दी जाएंगी, यानी सिलें बन जाएंगी और ये झुक नहीं सकेंगे। और फिर कहा जाएगा कि यही हम तो तुम्हें बुलाते थे। मैं जब भी दायित्व पे आती हूँ तो मुझे हमेशा ही एक बात याद आ जाती है, और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, दुनियावी लिहाज से पढ़े लिखे, हम्बल, सारी खूबियाँ जो किसी इंसान में हो सकती हैं अच्छी थी, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। और जब उनसे कहा जाता था तो कहते थे कि क्या ज़रूरी है कि इंसान पूरे ही नंबर ले, थोड़े कम भी हो गए तो क्या हुआ, पास तो हो जाएंगे। पेशे के एतबार से उस्ताद थे तो वो ऐसी ही मिसाल देते थे कि देखो ये है और वो है, तो हमारे तालिबिन हम जो 100 नंबर लेता है उसको भी पास कर देते हैं, 90 लेता है उसको भी, और इस तरह की बात थी। और आपको पता है कि शायद अल्लाह ताला ने उनकी बेहतरी मकसूद थी और उनको पाक करना था, इस बात से दुनिया में बीमारी में आ गए। इतने लंबे थे, यानी 6-7 फुट का जिस्म था, लेकिन बिस्तर पे पड़ गए, बैकबोन की कोई तकलीफ शुरू हुई और कमर झुकते गई झुकती गई, और फिर एक वक्त आया कि हड्डियां खुलने लगी, और जब दुनिया से गए तो बिल्कुल इतना सा जिस्म हो चुका था, ऐसे लगता था एक बच्चा और कुबड़ा हुआ हुआ इंसान, और ऐसे लगता था कि जैसे बड़ी कोई क्या कहा जाए कि बकरी का कोई बच्चा, कोई इतना ज्यादा आजिज मिजाज लगता था, और हर वक्त आंखों में आंसू रहते थे और रियायत पढ़ते थे। जब बीमार कितने साल बिस्तर पर रहे, जब लोग मिलने जाते थे तो कहते थे, बात भी नहीं फिर आखिर में हो सकती थी, लेकिन जब तक बात करते थे तो कहते थे कि हमारी तो ये हालत है कि वक़द कान युदउन इल सुजूदी वहुम सालिमून, जब कहा जाता था झुको तो हम झुकते नहीं थे, आज झुक नहीं सकते, नमाज का पढ़नी थी वो तो बैठ नहीं सकते थे। तो अल्लाह ताला की पकड़ से हमें बचना है, और उनके लिए हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला फिर उनकी बख्शिश कर दे। और वाकई बड़े नेक इंसान थे, इन चीज़ों से शायद अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनसे तौबा करवा के انشاءاللہ ان کو پاک کیا ہوگا، لیکن کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا بول نہ بولے کہ جس سے اللہ کا مذاق ہو، اللہ کے دین کا مذاق ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان جھٹلانے والوں کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم ان سے خود ہی نپٹ لیں گے. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ صبر کر لیں، آج آپ کی قوم آپ کو بہت ستا رہی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے، لیکن دیکھیں وہ حضرت یونس بھی تو وقت سے پہلے نکل گئے تھے، ابھی عذاب کا وعدہ نہیں آیا تھا تو چلے گئے تھے، تو آپ ایسی غلطی نہ کیجیے. یہاں ربط کیا ہے ان کی بات لانے میں کہ وہ نکل گئے تھے، آپ ان کافروں کی باتوں سے جو مکہ میں آپ کو ستایا جا رہا ہے اس پہ دل میلا نہ کریں، ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم ضرور آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اس رکوع میں سے جو ہمارے عمل کی بنیادی بات نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور جب جھکنے کا وقت آئے تو جھک جانا ہے. کبھی بھی اللہ کے سامنے بری بات مجھ سے نہیں نکالنی کہ جس سے تکبر اور اس طرح کی باتیں محسوس ہوں کہ واقعی ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. چلیے سورۃ الحاقہ پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. ثابت ہونے والی، اور ثابت ہونے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے. اس کھڑکا دینے والی کو ثمود اور آت نے جھٹلا دیا، جس کے نتیجے میں ثمود تو بے حد خوفناک اور خوب اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور آت بے حد تند و تیز ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا. بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. کیا ان میں سے کوئی بھی آج تجھے باقی نظر آتا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. یعنی کوئی قوم عاد کا، قوم سمود کا بندہ آج دکھتا ہے؟ ہمیں بھی نہیں دکھتا، سب کہاں گئے، سوچو کس انجام کو پہنچ گئے. اور اس کے بعد وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا. جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. پس جب کہ سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن بالکل ہی وہ کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. پس وہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا، لو میرا نام اعمال پڑھ لو. کیسے ملا؟ کیا تھا تمہارا کام؟ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ. یقیناً مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے. پس اب وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے. لیکن جسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی گئی تو وہ کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. وہ کہے گا، کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے. کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا اور میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا. پھر حکم ہوگا، خذوه فغلوه، اس کو پکڑو اور اس کو توق پہنا دو. ثم الجحیم صلو، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ اس کا قصور کیا تھا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھانا کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، بس آج نہ کوئی اس کا دوست ہے اور پیپ کے سوا کوئی غذا اس کی نہیں۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ ہے رکوع نمبر 5۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ وہ دن جب کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی پکڑ کا ذکر کیا، قوم ثمود، قوم عاد کس طرح اچانک اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئی۔ ثمودی جو تھے، ایک ان کے اوپر چنگھاڑ کی آواز سے وہ مارے گئے، اور قوم عاد پر آندھی چلی تھی، 7 راتیں اور 8 دن تک رہی، اور ایسے تھے جیسے پچھڑے پر رہے۔ یعنی کبھی آپ نے مالی کو دیکھا ہوگا کہ جب آ کے باغ کو ذرا سیدھا سادہ کرتا ہے تو اس کے بعد زمین پہ کتنے ہی کٹے ہوئے چیزیں، شاخیں، پتے پڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ کٹے پڑے تھے کہ جیسے کوئی کھجور کے کھوکھلے تنے، لمبے قد تھے قوم عاد کے، جب سر سے گردنیں ہٹی تو نیچے ایسے لگا کہ اب صرف تنے کے تنے رہ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آج باقی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کوئی خبر آئی ہو فلاں جگہ میں، فلاں دنیا کے حصے سے کوئی ایک ایسا شخص ملا جس کا تعلق قوم نوح سے ہے، قوم عاد سے ہے؟ نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ سارے؟ آج ان کے نام بھی نہیں۔ تو لہٰذا جو بھی لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر کے جئیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے نام کو ختم کر دے گا۔ پھر اس کے بعد فرعون کی بات ہوئی، کس طریقے سے اس نے پیغام میں موسیٰ کو جھٹلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی کہ کس طرح ایک کمزور سی کشتی میں ایمان اور توکل کے سہارے وہ پار لگے، اور وہ لوگ جن کو اپنی شان کے اوپر مان تھا وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو شروع میں بات ہوئی تھی، اس ناطے سے 7 باتیں سامنے رکھی، اور وہ کون سی ہیں؟ کہ وہ جس جب سور پھونکا جائے گا، الحاقۃ الملحاقۃ، یعنی قیامت کیا ہے؟ سور میں پھونک ماری جائے گی، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اب آگے دیکھیے گا، پورا 30واں پارہ تو پورے کا پورا، لیکن 29ویں پارے میں بھی کتنی کثرت سے قیامت کے دن کا تذکرے ملیں گے۔ آسمان پھٹے گا، فرشتے اتریں گے، اللہ تعالیٰ کا عرش فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ کوئی بات بھی اپنے رب سے چھپا نہ سکو گے۔ یہ ہے اصل میں نقطہ اس کو دیکھنے کا، کہ وہ دن انسان کی ساری حقیقتوں کو کھول دے گا۔ اور پھر 2 طرح کے کردار، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، 3 باتیں ہیں اس کے ناطے سے۔ خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا، ہاؤ مکرو کتابیا، لوگوں میری کتاب دیکھ لو، ایسی جیسے فرسٹ آنے والا اسٹوڈنٹ اپنی رپورٹ سب کو دکھائے۔ کیوں ملا؟ کی وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ اس کو یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا۔ یعنی کہ وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، بلکہ کہا انی ظننت انی ملاقن حسابیا، میرا یہ گمان تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا۔ کیونکہ یہ احساس پھر انسان سے سارے ہی اچھے کام کرا لیتا ہے، اور اس احساس کے بغیر پڑھی ہوئی نمازیں بھی وہ صرف ایک ایکسرسائز تو ہو سکتی ہیں، لیکن روح سے خالی۔ پھر اس کو کہا جائے گا، یہ سب کچھ جو تمہیں ملا، دل پسند زندگی، عیش والی، یہ کیوں ملی؟ کہ تم جو دنیا میں کام کرتے تھے۔ کلو وشربو ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سوچنے کی بات ہے کہ اگر دنیا میں عمل نہیں ہوں گے تو کیا یہ خواہش پوری ہوگی؟ یہ تمنا پوری کی جائے گی اس کی؟ نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا کردار سامنے آیا، جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کی 3 حسرتیں ہوں گی اس دن۔ کون کون سی؟ کہے گا، کاش میرا نام عمل مجھے دیا نہ جاتا، پیپر ہی گم ہو جاتے۔ میں نے دیکھا ہے جو پہلے پڑھتے نہیں، محنت نہیں کرتے طالب علم، پھر غلط سلط باتیں لکھ آتے ہیں، اور پھر دعائیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کرے پیپر گم جائے، اللہ کرے جنگ لگ جائے اور بغیر نمبروں کے ہمیں پاس کر دیا جائے۔ अल्लाह करे हमारा उस्ताद का तबादला हो जाए, ऐसी ही ख्वाहिशें ऐसे लोग भी करेंगे कि काश मेरा मुझे ना मिलता, कहीं भूल भुलल जाता, गुम जाता, लेकिन मुझे ना मिलता। फिर दूसरी हसरत क्या होगी, काश दुनिया की जो मौत थी मेरी वही फैसला कुन होती, यानी इसके बाद दोबारा ना उठता। और तीसरा इस चीज़ का इजहार कि दुनिया में जो मेरा माल और मेरा इक्तदार था वो मेरे किसी काम नहीं आया। अल्लाह ताला इसके बारे में हुक्म क्या करेंगे फरिश्तों को, इसको पकड़ो, इसकी गर्दन में तौक पहनाओ और 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दो। क्यों? इसलिए कि दुनिया में बड़ा बेलगाम फिरता था, अब यहां इसको पकड़ के बांध दो। कसूर क्या थे इसके? 4 कसूर इस आयतों में आए। नंबर 1, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अजीम, अल्लाह बुजुर्ग बरतर पर ईमान नहीं लाता था, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता था, उसकी रग़बत नहीं देता था। आज इसका कोई दोस्त और गम ख्वार नहीं होगा, हाँ जख्मों की धोमन के सिवा खाने की कोई चीज नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, आज सारे दिन के रोजे के बाद अगर कोई अच्छी चीज ना मिले तो दूसरों को खाने को दौड़ते हैं, और जहन्नुम में जब भूख लगेगी तो मिलेगा क्या? गिसलीन। गिसलीन ठंडी पीप को कहते हैं। जहन्नुम के 2 अजाब हैं, गर्म और एक ठंडा। यानी जैसे बहुत गर्म चीज इंसान नहीं खा सकता, इसी तरह बहुत ठंडी चीज भी नहीं खा सकते। कहते हैं कि जहन्नमियों की पीप और उनके जख्मों से निकलने वाला खून और वो बदबूदार पानी जो जलने के बाद जिस्म से निकलता है, ये तीनों मिलेंगी तो गिसलीन बनेगा। आज दुनिया में आपको इस नाम का कोई मशरूब नहीं दिखता। कभी किसी ग्रोसरी स्टोर में जाके देखें जहाँ ड्रिंक्स होते हैं, अनगिनत किस्म के ब्रांड्स रखे होते हैं, कभी आपने देखे नहीं, कभी चखे नहीं, कभी सोचे नहीं, और लोग पी रहे हैं, ले रहे हैं। कहीं वहाँ गिसलीन नहीं, कहीं वहाँ खोलते हुए पानी वाले जहन्नुम की मेहमानी नहीं, लेकिन वहाँ जब पीना पड़ेगा तो क्या हाल होगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, खताएं करने वाले इसको पियेंगे। ये नहीं कहा गुनाह करने वाले बल्कि खता, और आपको पता है कि खता बहुत हल्के दर्जे की गुनाह थे, मिस्टेक। आपको वो कदम उठाना नहीं था, आपने उठा लिया, तो जरा सोचिए फिर जो जान के गुनाह करते हैं उनके साथ क्या हाल होगा। हमारे अमल की बात क्या है कि हमने दुनिया में ऐसे अमल करने हैं कि नामे अमल दाएं हाथ में मिले, अल्लाह ताला से हिसाब की मुलाकात के एहसास के साथ डरते रहना है, मिस्कीन को खाना खिलाना है, और अपने आप को कभी भी गाफिल नहीं करार देना। चलिए रुकू नंबर 6 को देखते हैं। फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला युबसिरून, फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लकौल रसूलिन करीम, बस मुझे कसम है इन चीजों की जिन्हें तुम देखते हो और इन चीजों की भी जिन्हें तुम नहीं देखते। क्या? इन्नहु लकौल रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान बुजुर्ग रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं। अफसोस ये कि तुम बहुत ही कम यकीन रखते हो, न ये किसी काहिन का कौल है। अफसोस कि तुम नसीहत कम ही ले रहे हो। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, और अगर ये भी हम पर कोई बात बना लेता तो अलबत्ता हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते, फिर इसकी शाहरग काट देते, फिर तुम में से कोई भी मुझे इससे रोकने वाला न होता। وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, यकीनन ये कुरान परहेजगारों के लिए नसीहत है। हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बास इसके छुटलाने वाले हैं। وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, बेशक ये छुटलाना काफरों पर हसरत होगी। وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, और बिलाशुबा ये हक यकीनी है। लिहाजा फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम, पस तुम अपने अजीम रब की पाकी को बयान करो। ये तरकु नंबर 6, इसका उन्वान क्या है? इन्नहु लहक्कुल यकीन, कुरान यकीनी चीज है। इब्तदा में मालूम हुआ कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है, फिर अल्लाह ताला ने कसम खाई कि जो चीजें इंसान देखता है और जो नहीं देखता उनकी। फिर चार बातें पता चली कि ये किसी काहिन का कॉल नहीं, किसी मजनू और दीवाने की बात नहीं, शायर की बात नहीं, बल्कि ये रसूले करीम की बात है, यानी नबी सल्लम पे ये सारे इल्जाम लगते थे। फिर इस बात को खोल दिया कि अल्लाह का नबी भी अगर हम पे कोई बात घड़ेगा तो हम उसकी रगे गर्दन काट लेंगे, यानी उसको भी इससे नहीं बचा सकते और कोई हमें इस काम से रोकने वाला नहीं। असल इस कुरान का मुकाम क्या है? परहेजगारों के लिए नसीहत और काफिरों की हसरत का बायस। क्यामत के दिन वो इस पे हसरत कर रहे होंगे कि हमने इस कुरान को क्यों झुठलाया, और परहेजगार इसको अपनाने और इस पे अमल करने की वजह से अल्लाह से अपनी रहमतें पा रहे होंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में अपने नबी को कहा कि तुम अपने रब की अजमत को बयान करो, उसकी बड़ाई को बयान करो। किस बात पर? कि उसने इतनी प्यारी किताब नाजिल की। हमारे लिए इस रुकू में अवल की बात क्या है कि हमने कुरान के हक होने का यकीन करना है और फिर लोगों को इसकी दावत देनी है, और हमने आखिरत के दिन की हसरतों से बचना है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसा काम करें कि जिसमें हम क्यामत के दिन हसरतों में आ जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आज ही अमल के रास्ते आसान कर दे।